पृष्ठ संख्या 410, मंडल आयोग रिपोर्ट पर प्रमुख राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण, स्टैंड ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द मंडल कमीशन रिपोर्ट। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संबंधित पक्षों द्वारा बहस समाप्त के उपरांत अभी घोषित किया जाना है, सभी राजनीतिक दल आरक्षण का पक्ष लेते हैं। मंडल आयोग रिपोर्ट, जिसने समाज को जातीय आधार पर विभक्त करने का भय उत्पन्न किया, मतदाताओं को फुसलाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। जैसा सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों से स्पष्ट है, जबकि राष्ट्रीय मोर्चा एवं वामपंथी दलों ने रिपोर्ट के क्रियान्वयन पर अपनी नीति स्पष्ट रूप से घोषित की है, अन्य दलों का दृष्टिकोण द्विअर्थक है। सभी दलों ने आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित किए जाने की मांग की कठोर आलोचना की थी, परंतु अब उन्होंने इस रिपोर्ट की ओर पकड़ने की क्षमता को महसूस कर लिया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अंकित किया है कि यह आरक्षणों के प्रति वचनबद्ध है, जो सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि यह सत्ता में आई तो सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की निर्धारित कोटा पदों को पूरा भर दिया जाए। यह पिछड़ा वर्ग विकास निगम स्थापित करने के लिए आवश्यक कानून पारित करेगी। यह आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए, जो वर्तमान स्कीमों के अंतर्गत नहीं आते, आरक्षण की सुविधाएं प्रदान करेगी। घोषणा पत्र में मंडल आयोग का कोई सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है यह पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। आरक्षण अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए पूर्ववत जारी रहना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रमुखतया मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार आरक्षण किया जाना चाहिए, परंतु इन वर्गों ने निर्धनों को वरीयता दी जानी चाहिए। आरक्षण अन्य जातियों को भी उनकी आर्थिक दशाओं के आधार पर दिया जाना चाहिए। पार्टी का कथन है कि आरक्षण नीति को केवल राजनीतिक, सामाजिक एवं सामाजिक माधुर्य बढ़ाने का एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। आरक्षण के प्रश्न पर बिना किसी पूर्वाग्रहों के खुले मस्तिष्क से विचार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मोर्चे का कथन है कि शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में 27% आरक्षण को पूर्णतया क्रियान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त 5-10% तक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ऐसे वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएं जो मंडल आयोग की सिफारिश के अंतर्गत नहीं आते। मोर्चे का कथन है कि यह मंडल आयोग की विसंगतियों तथा इस विषय पर प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना करेगी। पृष्ठ संख्या 411। समाजवादी जनता पार्टी का कथन है कि मंडल आयोग रिपोर्ट को क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है, परंतु इसे वैज्ञानिक ढंग से क्रियान्वित किया जाए, जिससे अंतरजातीय संघर्ष उत्पन्न न हो तथा राष्ट्र निर्माण में सहायता मिले। यह सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हेतु अति पिछड़े वर्गों को वरीयता देना चाहती है। राष्ट्रीय मोर्चे के वामपंथी सहयोगियों ने भी मंडल विवाद पर एक अस्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है। साम्यवादी दल मार्क्स का कथन है कि यह केंद्रीय सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु मंडल आयोग की सिफारिश का समर्थन करती है। यह इसे समाज कल्याण की ओर उचित पग समझती है तथा किसी भी प्रकार से आरक्षण के लाभों में छिद्र करने के पक्ष में नहीं है, परंतु यह लाभ पिछड़े वर्गों में वास्तविक पात्र वर्गों को ही प्राप्त होना चाहिए। भारतीय साम्यवादी दल का कथन है कि यह सामाजिक न्याय के व्यापक उपायों के क्रियान्वयन के पक्ष में है, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मंडल आयोग रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण, अग्रिम जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण तथा महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों के पदों पर 30% आरक्षण सम्मिलित है। निष्कर्ष कंक्लूजन। जैसा उपरोक्त वर्णित है कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर पर्याप्त मतभेद है, कुछ एक इसे पूर्णतया विरोधी हैं तो कुछ अन्य पूर्ण पक्षधर हैं, परंतु सामान्य सहमति है कि आरक्षण का मापदंड सामाजिक आर्थिक स्थिति होना चाहिए, जाति नहीं। जाति के आधार पर आरक्षण समाज में नए असंतुलनों एवं नई गलतियों को जन्म देगा। यह प्राचीन असमानता को समाप्त नहीं करेगा, अपितु नई असमानताएं खड़ी करेगा। समाधान अलाभान्वित समूहों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आहार तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के अन्य क्षेत्रों में विशेष एवं उदार सहायता देने हैं, ताकि उनमें प्रतियोगिता का स्तर ऊंचा उठे। सरकार तदर्थ अच्छे स्कूलों में पिछड़ी जातियों के बच्चों को उत्तम शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान कर सकती हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पिछड़ेपन का मापदंड केवल सामाजिक एवं शैक्षिक हो अथवा आर्थिक आधार भी। यह ठीक है कि सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन अंतर संबंधी है, परंतु इस बात को प्रकाश में नहीं लाया जा सकता है कि यह संबंध इतना पूर्ण नहीं है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि मूल समस्या सभी संबंधित वर्गों का आर्थिक उत्थान है, अतएव निर्धनता इस कार्य के लिए एक अतिरिक्त मापदंड बनकर उभरता है। इससे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सभी सदस्यों के हितों की रक्षा होगी, सिवाय उनके जो आर्थिक सीढ़ी पर ऊंचे पहुंचे हुए हैं। यदि अन्य पिछड़े वर्गों को अप्रतिबंधित आरक्षण दे दिया जाता है तो इसका लाभ केवल कुछ एक व्यक्तियों को समृद्ध है को ही पहुंच पाएगा, जैसा अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के मामले में हो रहा है। दूसरी ओर निर्धनता आधारित आरक्षण नीति का लाभ न केवल अन्य पिछड़े वर्गों के विशाल बहुमत को होगा, अपितु समाज के अन्य निर्धन वर्गों को भी होगा। किसी भी दशा में जातीय रेखाओं पर समाज के विभाजन को संभावित सीमा तक टाला जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 412। अतः लोक सेवाओं में आरक्षण का लाभ उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, परंतु जिन्हें पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसा उन परिवारों के लिए किया जा सकता है जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 7,500 रुपये से कम है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या का 22.5% भाग है, अतएव उन्हें तदनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया गया है। राज्यों में भी इसी प्रकार आरक्षण प्रदान किया गया है, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि केवल इन जातियों में केवल कुछ शीर्षस्थ व्यक्ति हैं इसका लाभ उठा रहे हैं, जिनके बच्चे उत्तम पब्लिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त हैं। ऐसे व्यक्ति आरक्षण को अपनी ही जाति से अधिक आलाभान्वित सदस्यों तक पहुंचाने में सहायता नहीं देते, अतएव पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति का सावधानी पूर्वक अनुसरण किया जाना चाहिए। इसके लाभ पिछड़े वर्गों के अधिक से अधिकतम सदस्यों को पहुंचना चाहिए, ताकि हम सब एक सुनिश्चित वातावरण में रह सकें और इन लाभों को कुछ एक व्यक्तियों द्वारा बटोर न लिया जाए, इसका प्रयास करें। अतएव यदि किसी परिवार में एक बार आरक्षण नीति का लाभ उठा लिया है तो इसे आत्मनिर्भर बनने तक एवं खुले वर्ग के प्रत्याशियों के साथ सरकारी सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा जाए। मंडल आयोग की सिफारिशों को अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए स्वीकार किया जा सकता है, परंतु इस व्यवस्था के साथ इसमें अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों जिनकी आयु 7,500 रुपये वार्षिक से कम है को भी सम्मिलित किया जाए। वस्तुतः नैतिक प्रारंभिक बल गरीबी रेखा से नीचे सभी परिवारों को दिया जाना चाहिए। संविधान की धारा 46 का अधिक प्रयोग करके सरकार अन्य पिछड़े वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए विशेष कार्य चालू कर सकती है। लोक सेवाओं में आरक्षण का लाभ किसी परिवार को एक ही बार दिया जाना चाहिए, अन्यथा कुछ एक परिवार ही इन लाभों का एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं तथा दूसरों को इसका लाभ पहुंचने नहीं देते। इतने शीघ्र किसी परिवार को आरक्षण पर निर्भरता से मुक्त कर दिया जाए, यह उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की लंबे समय तक आश्रितों पर स्वापतनकारी है। सरकारी पदों पर कार्य निपुणता बनाए रखने के लिए आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए पूर्ण सेवाकालीन एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। पृष्ठ संख्या 413। मंडल आयोग एवं इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह के उतावलेपन ने भारतीय जनता, विशेषतया हिंदी क्षेत्र को आंदोलित कर दिया। मूल्यवान संपत्ति की अपार हानि हुई एवं अनेक नवयुवकों की मृत्यु हुई, जिससे देश में अत्यंत शोक उमड़ पड़ा। यह दुखद है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में आरक्षण विरोधियों एवं इसके पक्षधरों के मध्य कष्टदायक संघर्ष का मूक दर्शक बनी रही। मामला अब देश के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख है। आशा है कि न्यायालय कोहरे को स्पष्ट कर देगी तथा रिपोर्ट एवं इसके क्रियान्वयन से संबंधित विषयों को देश के सर्वोत्तम हितों में निर्णित करेगी।